हदीस में पहला क्या था? इमामुन आदिलुन, अदल और इंसाफ करने वाला हुक्मरान। तो इसमें सबसे पहले मुवाहिद, जो अल्लाह के मामले में अदल करता है, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। तो क्या पता चला कि अपनी जात से इस मामले को हमने शुरू करना है, शिर्क करना नाइंसाफी है। फिर इसी तरह मुआशरे के नॉर्म्स, रस्म व रिवाज, इसमें अदल, इसको आप सोशल जस्टिस कह सकते हैं, यानी अल्लाह के अहकामात को लेना। फिर ला तातली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जिस चीज़ में खालिक की नाफरमानी हो उसमें दूसरे की नहीं माननी। अल्लाह की रजा के आगे किसी की रजा नहीं चलेगी, और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। आपका मेरा इसमें अमल क्या है? अगर हम हुक्मरानों को कहते हैं वो अदल और इंसाफ नहीं कर रहे, तो कभी सोचिए कि हुक्मरान से पहले एक अदल किसने करना था? आपने। वोट डालना भी तो एक काम था ना। दो रूठे हुए, आपकी माँ और आपकी भाभी, यानी सास बहू का झगड़ा हो गया और आप नंद है, आपका उस वक्त अदल क्या है? क्या आप माँ जो गलत पॉइंट पे हैं उनका साथ देती हैं, या भाभी का देती हैं जो बेचारी दबी हुई है, जिसको लोगों ने कहा था बस अब चुप कर जाना, जो भी करेंगे सुनती रहना सहती रहना, ठीक है? तो अदल का दायरा कार बहुत बड़ा है। आज हम सेकंड कैटेगरी पे चलेंगे, और वो क्या है? आपके सामने हदीस भी मौजूद है, अश्शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह ताला की इबादत में जवान हुआ, यानी वो शख्स जिसको जवानी में ही इबादत का मौका मिल गया। सुभान अल्लाह, अपनी जवानी को गलाता नहीं है, खपा देता है अपने आप को उस चीज के अंदर जिसको रब की रजा कहते हैं। और हकीकत यह है कि ये है वो जवानी जिसको कहते हैं कि दर जवानी तौबा करदन, शेबे पैगंबरी। तो कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में खुशकिस्मत लोगों में से वो जिसकी जवानी बेदाग थी, पाक थी। और शाबुन नशा फी इबादती रब्बी ही, इसमें भी दो मानी है। नशा कहते हैं नशो नुमा से ऊपर करना, नशरत हजरत मरियम के लिए आता है, अल्लाह ने उनको ऐसे उठाया। तो जिसने अपने रब की इबादत में नशो नुमा पाई, यानी वो शख्स जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, क्यों? इसलिए कि जवानी में ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती हैं। आदमी बुराई करना चाहे तो हाथ पांव उससे कुव्वत फराहम करते हैं, और जवानी में जज्बात ज्यादा गालिब होते हैं। अरबी की कहावत है, कहते हैं कि अश्शाबु शोबतुम मिनल जुनून, जवानी दीवानगी की एक किस्म है। हमारे कल्चर में भी कहते हैं जवानी दीवानी। आप देखिए कि इस उम्र में इंसान होश की बजाय जोश से ज्यादा काम लेता है, जज्बात जवां होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं। बाज़ वक़्त गैर इरादी तौर पर और जज्बात में बहकर बंदा बुरा काम भी कर जाता है, और अच्छा काम भी जवानियों में ही होता है। आगे चलेंगे तो हम इसमें सहाबा की मिसालें पढ़ेंगे। एक मर्द मोमिन के दीन और ईमान के लिए ये दौर कड़ी आजमाइश का दौर होता है। ऐसे में जो लोग मुआशरे के दबाव के बावजूद, चारों तरफ गुनाहों के मौके के मौजूद होने के बावजूद भी, अगर अल्लाह ताला उनको बचा ले और वो अपना दिल इबादत में लगा दें, तो यही है वो जिनको अशरे मुबशरा भी कहते हैं। आप देखिए कि शाब का जो लफ्ज है ना, दो इसके बारे में बातें लिखिए। बस कहते हैं 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र, यानी आप में से वो अभी जिनकी उम्र 40 नहीं हुई वो भी जवान है। अभी ये कैटेगरी हमारे लिए भी खुली हुई है। ये रंजना कीजिए कि हम तो बूढ़े हो गए, और ये तब हमारे बच्चों के लिए 40s के दौर तक को भी उलमा कहते हैं कि ये शाब ही होता है। और दलील है कुरान में, सूरत अहकाफ की आयतों में आता है ना, हत्ता इजा बलगा अरबईन, जब वो 40 की उम्र को पहुंच गया तो माँ बाप के लिए दुआ करता है, ठीक है? तो 15 साल की उम्र की कहानी, और इस पे इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु की हमें मिसाल मिलती है कि जब वो 14 साल के थे तो एक जंग के लिए लोग जब जा रहे थे तो ये भी गए कि मुझे भी ले जाए। सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह के नबी ने उनको वापस कर दिया कि नहीं अभी तुम छोटे हो। अगले साल फिर कोई मौका आया तो ये फिर आ गए, तो अल्लाह के नबी ने इनको रख लिया। तो 15 की उम्र से शबाब या शाब शुरू हो जाता है। دوسری رائے جو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی ہے ان سے ہمیں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیوبٹی بلوغت سے شاب شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اصل زندگی ہے ہی جوانی کی. جوانی ہے نا. آپ دیکھیں صحابہ کہف کے لیے قرآن نے کیا کہا، فتن، نہ ان کی نمازوں کا ذکر نہ روزوں کا ذکر. جو خوبی ان کی بیان کی وہ کیا تھی، شباب، جوانی تھی. آج کے جوان کو سامنے رکھ کر ذہن میں لائیے کہ جوانی کی عمر کتنی قیمتی ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی بہت ہی بڑے محدث گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کے ناطے سے، کہتے ہیں کہ افنا، جس نے فنا کر دیا شبابہ، اپنی جوانی کو، ونشاتہ، اور اپنے نشاط کو. نشاط کو اب کیا کہتے ہیں، مستی، موج کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں. کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اپنی جوانی اور قوت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں فنا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. آپ دیکھیے کہ زندگی میں نا قدم قدم پہ امتحان بہت سارے ہیں ہمارے. جس طرح حقوق میں انصاف کرنا بہت مشکل ہے نا، جس کا ذکر پیچھے بھی پڑا ہے، اسی طرح اپنی جوانی کو پاک رکھنا، بے داغ رکھنا بھی بہت مشکل ہے، اور خاص طور پہ پھر جوانی میں عبادت میں خود کو کھپانا، اس لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. ساری عمر گناہ کما کے بڑھاپے میں مسجد میں کوئی آ جائے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو سب ہی آتے، وہ کہتے ہیں نا ڈالی ڈالی کود کے بالآخر تنے کے رستے ہی بندہ نیچے آتا ہے. کیا اب تو عمر نے مجبور کر دیا، جسم میں وہ قوت نہ رہی. شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی اچھے شاعر بھی تھے، تو اس کا ایک بڑا پیارا نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں درد جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نی شود پرہیزگار. کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا نبیوں کی عادت تھی، کیونکہ آپ کو تو ہر نبی جوانی میں ہی نبوت ملی اور 40 سال کی عمر میں ملتی تھی. پھر کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے وقت ظالم قسم کا بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ اب اس سے نوچے نہیں جا رہے لوگ. آپ خود سوچیے نا، جوانی میں حسن ہوتا ہے، دکھانے کو دل کر رہا ہے، فگر اچھا ہوتا ہے، پتلی کمر ہے تو سٹریچی کپڑے پہننے کو دل کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جوانی میں انرجی بہت ہوتی ہے، جذبات ہیں، اٹھان ہے جسم میں، دوسروں کو دکھانا ہے. وقت کے ساتھ کیا رہ جاتا ہے، پہنا بھی نہیں سوچتا، فگر خراب ہو جاتا ہے، وہ اٹریکشن نہیں رہتی بندے میں، تو پھر تو آہستہ آہستہ خود ہی ڈھیلے کپڑے پہننے ہی ہیں نا. اصل امتحان جوانی کا ہے. پانچ سوال جو قیامت کے دن کیے جائیں گے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یصل عنہ خمسہ، پانچ چیزوں کا جواب دیے بغیر آدم کے قدم زمین پکڑ لے گی. اور اس میں دوسرا سوال، جہاں حدیث آئے گی آپ کو لکھا دوں گی، لیکن یہاں صرف سمجھانا چاہتی ہوں کہ جوانی بڑی اہم چیز ہے. ان شبابہ فیما بلاہ، جوانی کہاں پرانی کر دی. تو یاد رکھیے، جو نوجوان، اور یہاں صرف مرد نہیں، یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں، میں آپ کو بھی اس کا جواب دے دیتی ہوں بغیر کہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، چونکہ صیغہ تغلیب ہوتا ہے نا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایمان والیاں بھی تو اسی میں ہی ہوتی ہیں نا. تو کیا پتا چلا کہ جوانی، یہاں رجل کا لفظ ہے نا، تو یہ امراۃ بیسی میں ہی ہے. اگر جوان مرد کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو عورت کو نہیں دے گا. کئی سوال کرتے ہیں، کیا صرف مرد ہوں گے تو ساری باتیں مردوں کی، امام عادل. تو کتنی بحث کی ہم نے کہ ہم نہیں امام عادل، ہر ایک جس کے اوپر کوئی اتھارٹی، جس کے پاس کوئی ذمہ داری، کوئی لائبلٹی ہے، وہ امام ہے. ہر ایک کو دوسرے فالو کرتے ہیں. آپ ایک ماسی لے کے آتی نا گھر میں، تو آپ اس پہ جو روپ ڈالتی ہیں نا گھر جا کے، وہ اپنے بچوں پہ ویسے ہی ڈالتی ہے، بچے ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم میں سے ہر ایک پہ ہے، جوان مرد عبادت کر لے یا جوان عورت کر لے. تین کیٹیگری، آپ ابھی جب اینڈ پہ پہنچیں گے نا، ٹوٹل 7 ہیں، آؤٹ آف 7 3 جوانیوں سے متعلق ہے، جس میں آج ابھی بات شروع ہوئی ہے. آگے جا کر آپ دیکھیں گے 2 کیٹیگری اور بھی آئیں گی. پھر ہمیں پتہ چلے گا ہمارے بچے کس ماحول میں، اور خاص طور پہ جب ہم اس کا وہ حصہ پڑھیں گے جو کیٹیگری نمبر 5 ہے. ابھی اس پہ رہیں بس. लोग बातें करते हैं तो करने दीजिए, उनका और काम ही क्या है। आप अगर इस वक्त 40 के हैं या चले 40 से भी ऊपर हैं, तो क्या आप खत्म हो गया ये वक्त? हर आने वाले दिन की निस्बत आज आप जवानी है ना, पर्सनल कितने हाइजीनिक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो हर आने वाले दिन आपने यही कहना है ना, वो जब हम जवान थे। आप देखिए कि क्या हम नहीं चाहते कि क्यामत के दिन हिसाब किताब की सख्तियों से अल्लाह में बेनियाज कर दे। तो लिहाजा जवानी में इबादत करना, अपने हिसाब किताब को आसान कराना है। कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला वहां सबको दिखाएंगे कि फरिश्तों ये वो बंदी थी या ये वो बंदा था जो जवानी में इबादत करता था। क्योंकि जवानी में ना गुनाहों से रुक जाना भी सब्र होता है, और इस सब्र की वजह से जहन्नम की आग ठंडी हो जाती है। यही जो आपको शेख सादी का शेर सुनाया ना, तो इनकी पूरी गजल है। चले आपको इसकी उर्दू सुना देती हूँ। कहते हैं कि बाप बूढ़ा होने लगा तो मुझे एक नसीहत कर गया, बाप की जिंदगी का जब जमाना खत्म हुआ मुझे एक नसीहत की और गुजर गया। क्या है बाप की नसीहत? बाप कहता है कि शहवत एक आग है, लस्ट इज अ फायर। और आज तो गानों में ये इस आग को दिखाते हैं, फिल्मों में। कहते हैं कि गुजर गया कि शहवत एक आग है, इससे बच अपने ऊपर दोजख की आग को तेज ना कर, तू इस आग में चलने की ताकत नहीं रखता। आज इस आग पर सब्र का पानी छिड़क दे, तो फिर हम जरा से इसको समझें। अब आज आप इस एज में हैं अपनी, पता नहीं पीछे क्या किया क्या नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी जिंदा है। एक काम कर लीजिए, अभी से अपने जवान होते हुए बच्चों की जवानियों को बेदाग करिए। आज आप देखिए कि हमने अपने बच्चों को उनके उस मकसद हयात से दूर रखा जिसने उनको अल्लाह का अब्द भी बनाना था और हमारा ओबीडियंट बच्चा भी बनाना था। जब हमारा लाइफस्टाइल ही सारा ऐसा हुआ, एक बच्चा जो आंख खोलता है किसी फैमिली में, तो वो देख रहा होता है कि मेरी माँ किस चीज के पीछे भाग रही है और बाप किधर, पैसे का पीर, स्टेटस, तालीम, एजुकेशन। आप देखिए कि अशरा मुबशरा कितने हैं? 10 है ना, 10 में से 6 अंडर 19 थे। आप अपने ऊपर लेकर सोचिए कि अल्लाह के नबी के दौर के जवानों को इतना शौक था, 6 सहाबा को दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिलती है और वो 19 साल से कम उम्र के हैं। क्यों? इसलिए कि जो जवानी होती है ना, यंग एज, ये डिस्कवरी की एज होती है, हर चीज जो नई लगती है, नया नया तजुर्बे हो रहे होते हैं, कुछ तजस्सुस भी बहुत होता है। बाय डिफॉल्ट जवानी में इंसान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इंक्लाइंड होता है। ये अलग बात है कि उसको रास्ता नहीं दिया जाता जवानी में। मेरे लिए दी बेस्ट ऑडियंस 7 से 8 साल की बच्ची है। मैं कल भी बच्चियों की क्लास में थी तो मैं उनको कह रही थी कि अगर टीचर्स के साथ थी ना सेटिंग, ऐसी हम बैठे हुए थे, मैंने उनको बताया कि अगर मुझे कोई अब चॉइस दे ना कि दोबारा री स्टार्ट करो अपने आप को, तो मैं अडल्ट टीचर नहीं बनूंगी। आप जैसे बड़ों को नहीं मैंने पढ़ाना, बूढ़ों को भी नहीं पढ़ाना, जो बनना होते बन चुके होते हैं, बदलते ही नहीं है। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनके सर के भी कान और अंदर के भी कान खुले होते हैं और मासूम, और जहां जरा 9 से 10 पड़ गया तो जरा सा कोई इंटेंसिटी कम होती है, फिर 12 के बाद 14, फिर तो वो पार पुरजे, और फिर वो 16 के बाद तो दिखते ही नहीं, फिर वो कतरा कतरा करके हमारी जिंदगी से निकल जाती है चीजें। और जो कल्चर आज हम देख रहे हैं उसमें बच्चे अल्लाह के साथ तो क्या, माँ बाप के साथ भी नहीं मिलते। जो औलाद अपने माँ बाप का हक नहीं दे रही, वो अल्लाह का कैसे दे? एक बाप पैदा होने से लेकर जवान होने तक एक बच्ची और बच्चे पे, बच्ची इसलिए ज्यादा कह रही हूं कि हम सब औरतें हैं, तो मर्द हो तो मर्द, यानी अपने बीवी बच्चों पे एक बाप कितना लगाता है, कमर दोरी हो जाती है बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, कर्जे ले ले के पढ़ाते हैं। आज वो बच्चे क्या उन माँ बाप की आंखों की ठंडक है? आज का साइलेंट पॉइजन जो दिया जा रहा है माशरे को, वो कह के माँ बाप बच्चों पे इख्तियार छोड़ दें। आपने कह के शादी की, बच्ची ने बसना ही नहीं, वो कहती है मैं कैसे बसू, मैं क्यों इधर शादी करूं, मैंने पहले कह दिया तो मैंने नहीं इधर रहना। तो माँ बाप का हक गया ना, अपने ऊपर लीजिए। लेकिन इस वक्त गम ये है कि हमारे बच्चे क्यों पर्पसलेस हो गए। वो बच्चा जो रात सोने तक स्क्रीन के आगे बैठा, कानों पे हेडफोन लगाए, आंखों पे दूरबीने लगाए, कहीं स्पिल खेल रहा है, कहीं वीडियो गेम्स खेल रहा है, उसकी तो एक नई दुनिया बन गई। लेकिन मैं बस इतना बता सकती हूँ कि हमने अपने बच्चों को डी ट्रैक किया हुआ है। अगर अब वो बिगड़ेंगे तो उनको हक है कि वो बिगड़ें। मेरा गुमान है कि उनका हक है कि वो बिगड़ें। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपना कसूर देखें, कैसे हम उनकी एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मरते हैं। वो कपड़े जो आज की बच्चियों के लिए माएँ बनाती हैं, आपको मुझे मिलते थे वो? वल्ला ही नहीं मिलते थे। एक ही जुमला था शादी के बाद पहनना, और वो भी क्या थे, साटन की शलवारें और कोई वुली के कपड़े। माँ के कपड़े पहनती थी बेटी, और बड़ी बेटी के कपड़े पहनती थी छोटी बहन, बड़े बच्चे के छोटे कपड़े पहनते थे। ये कोई तूफाने बदतमीजी था जो आ जाए? अलमारियां बंद नहीं होती, ये घाघा चोलियां एक अनमेरिड बच्चियां पहनती थी, साड़ियां पहनती थी, इतने महंगे कपड़े और इतना महंगा मेकअप अनमेरिड बच्ची करती थी। तो आप उसको बनाकर इतना सजाकर जब पेश करते हैं तो जज्बे तो आएंगे। और जो शादियों का आज का माहौल है, आप सबकी शादियां ऐसी हुई थी, तो निभ गई ना? आज क्यों नहीं निभ रही? चले ये तरीका ठीक है तो निभना चाहिए ना। हर दूसरी शादी तो अंदर से रोग लगी हुई है। शादी वाले दिन मेरा ले सारे खुश होते हैं सिवाय लड़के या लड़की के। कभी लड़का खुश है तो लड़की खुश नहीं, लड़की खुश है तो लड़का खुश नहीं। क्या हो गया हमें? यदि यकीन करें, वी आर ऑन वेंटिलेटर, आखिरी सांस ले रही है ये तहजीब। तो आज हमारी यूथ अंडर प्रेशर है। वो सहाबा अल्लाह के नबी के साथ जो चिपके रहते थे ना मैग्नेट की तरह, वो जवान थे। बूढ़े बाप नहीं माने, अबू लहब नहीं माना, अबू जहल नहीं माना, उतबा नहीं माना, शैबा नहीं माना, रबिया नहीं माना, अबू तालिब की भी जुबान पे कलमा नहीं आया, और इनकी औलादे नबी की यूथ फोर्स थी। आप देखिए इब्ने मसूद, इब्ने उमर, जो बड़े बड़े नाम आप लोगों ने सुने, अमर बिन आस की बात कर लीजिए, साद बिन अबी वक्कास, ये सब नबी के साथ रहने वाले नाम थे, सब अंडर 19 थे, क्योंकि उनको वो जन्नत दिखती थी। और ये 4 दिन की दुनिया को जन्नत बनाने लगे, एक दफा इसको लात मार के वो मैदान हशर को अपने सामने रखिए, जन्नत में जाकर सब मिल जाएगा। आपको ये दुनिया ही फिर चाहिए ना, यहाँ की चीजें ये ले आए, मिल जाएगी। आज वो इस्लाम जिसका नाम मिटाने के लिए लोग परेशान, नबी का रसूल का मजाक उड़ाने पे लोग तैयार, आपके इस मुल्क में कुरान चलाने का गैंग तैयार हो चुका है। वो फख्र से बताते हैं कि हम फलां जगह जाकर कुरान चलाएंगे, यानी आओ और हमें रोको और फिर हम शोर मचाएं। और हमारी प्रायोरिटीज क्या है, किस ब्रांड का जोड़ा बनेगा? आज की शादी का सेलिब्रेशन सिर्फ गुनाह का नाम है। कल क्यामत के दिन मेरे कंधों पे बोझ होगा उन सारी बेपर्दा औरतों का जो मेरे बच्चे की शादी में आकर बैठी, मजबूरी में बैठी या क्या, फिर भी आके बैठना, किसी को प्रेशर में बिठा देंगे, चुप करके बैठ। मियाँ कहेगा मेरे साथ चलो, सास कहेगी चलो चलो घर नहीं रहना, अब वो जाएंगी तो कल क्यामत के दिन मैं जिम्मेदार होंगी, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप देखिए कि हमारे बच्चे जो है ना, उनका माइंड बहुत शार्प है, कैसे कंप्यूटर चलाते हैं। एक आप फोन दीजिए, खोल के कट 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 कर करके आपको सारा सेट कर देंगे। हम अगर अपने से देखें तो 18-20 साल की उम्र में जो बात समझ आती थी ना, वो आज के 4-5 साल के बच्चे को आती है। हजरत अली कहते हैं कि अपने बच्चों की एज को 3 हिस्सों में बांटो। 7 साल की उम्र तक ये तुम्हारा खिलौना है, बच्चों के दोस्त रहो, बहुत रोक टोक नहीं करो उस वक्त में। 7 से अगले 7 साल यानी 14 साल तक के वक्त में तालीम दो, अदब सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ, अदब यानी तालीम क्या है, एजुकेशन। और फिर 14 से जो 21 है ना, इनके मेंटोर बन जाओ, और उसके बाद इनको दुनिया के मैदान में छोड़ दो। आप कहते हैं हमने नहीं किया, तो आज से शुरू कर दें, इसलिए कि हमें जरूरत है इस बात की। आज भी माँ मेहनत करे और रातों को जाग के दुआएं करे, अल्लाह बिगड़े बच्चों को हिदायत पे ला सकता। इब्ने मसूद सबसे पहला वो नाम है जिन्होंने हरम में जाकर ओपनली कुरान पढ़ा था। तो लोगों ने, बल्कि अबू जाहल के बारे में आता है कि इतना मरवाया इनको कि इनकी ये गर्दन की हड्डी टूट गई, कॉलर बोन कहते हैं ना उसको, तो जब होश आया इनको, पहले नहीं पता लगा क्या हुआ, कहा मेरे साथ क्या हुआ, कहा ये हुआ तुम्हें मरवाया, कहा अच्छा मैं दोबारा वही करूंगा। क्योंकि उनके दिलों में ये यकीन था कि हम जो करेंगे वो हमें फायदा देगा। तो यहां से ही, अब चूंकि अगली भी कैटेगरी है, तो मैं थोड़ा सा उसको शुरू करती हूँ, जिसके ऊपर फिर हम डिस्कशन के साथ नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। और थर्ड कैटेगरी क्या है? मस्जिद से मोहब्बत करने वाला दिल, वो शख्स, वो बच्चा, वो लड़का, वो मर्द, वो औरत, वो बच्ची, जो भी ले लीजिए, सबके ऊपर ये फिट होता है, जिसका दिल मस्जिद में लग गया। पहले तो दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे दिल मस्जिद में लग जाए,
आमीन
अल्लाह हमारी नस्लों के दिल मस्जिदों में लग जाए। जरूरत है इस बात की, और हमें अल्लाह 24/7 का आबिद और अब्द बना दे। आप देखिए कि ये सारा कुछ ही हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। इमाम बुखारी भी तो जवान ही थे ना, जवानी में कर गए। उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानियां सुन ले, सबकी कर ले, उनकी देख ले, उनकी देखें। तो आइए जरा सा थोड़ा सा इसको समझते हैं, इंशाल्लाह हम फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए लेंगे। लेकिन मस्जिद से मोहब्बत करने वाला दिल कैसा होता है? पहले तो जहन में लाइए दोबारा क्यामत के दिन को, कोई साया नहीं सिवाय अल्लाह के अर्श के साये के। हदीस के लफ्ज क्या है? रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम फिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। दिल किस में अटकता है? जैसे फोन में अटका होता है, 5 मिनट मैसेज ना ना चेक करे कोई, तो ऐसे लगता है ऑक्सीजन रुक गई। नमाज पढ़नी मुहार, एक दफा बीच में टिक क्लिक हो जाए, सारी भूल गई। फातिहा तो पहले ही नहीं थी पता के पढ़ा क्या, सूरत तक भूल जाती है कि पढ़ी क्या। अब सलाम फेरते वैसे पूछे ना कौन सी सूरतें पढ़ी है, तो याद नहीं होती। कल भी कैफियत क्या? नमाज पढ़ी, घर आ गया, कारोबार में लग गया, दोस्तों में, घर में, जूं ही अगली नमाज का वक्त करीब आए, इंतजार शुरू करें, इंतजार उस सलात इबादत सलात, अजान हुई मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद से बाहर ऐसे जैसे पानी से बाहर मछली, बेकरार। उसका दिल मस्जिद में आकर ऐसे लगता है जैसे वो कहते हैं ना, स्विच को उसकी जगह पे लगा दे तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, कि बाहर गया पता नहीं क्या होगा, कोई फितना ही ना चिपक जाए मुझे। इमाम मालिक इस हदीस की शरह में कहते हैं, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद इजा खरज मिनहु हत्ता याऊद इलैह। इससे मुराद वो शख्स है कि जब वो मस्जिद से बाहर आता है, तो जब तक दोबारा मस्जिद में लौट ना आए, इसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहता है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को ऐसे ही लोगों में शामिल कर दे। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, दुआएं नहीं मांगेंगे, ख्वाहिशात पे नजर नहीं रखेंगे, बात नहीं बनेगी। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे रोल मॉडल्स अल्लाह के नबी और आपके साथी हैं। वो लोग जो अपनी जिंदगियां वक्त के साथ बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं ना, अल्लाह ताला फिर उनको खैर भी दे देता है। आप में नमाज पढ़ते हैं ना, रोजा रखते हैं, वो कैफियत होती है। आप उस वक्त आबिदा हैं, साइमा हैं, इसको इबादत कहते हैं। लेकिन 24 घंटे की इबादत करना अबदियत है, यानी हम इबादत गुजार तो होते हैं। आज भी लोगों के हाथों में तस्बीह, बल्कि ये भी एक ट्रेंड बन गया, अब तस्बीह हाथ में रखना, पता नहीं गिनते गिनते हैं या अल्लाह का जिक्र गिनते हैं, आई डोंट नो। अब्द बनना के क्या खुद को अल्लाह का गुलाम समझे? तो आज यहां इस बात को अपनी समझते हुए हम अपनी इस चीज को पूरा करेंगे। अब्द बनना है कि आबिद बनना है? आज आबिद बहुत है, आबिदा भी बड़ी है, हो सकता है आप में से भी किसी का नाम आबिदा हो, लेकिन अब्द बनेंगे तो फिर अल्लाह का हक अपनी जिंदगी पे महसूस करेंगे। आप अल्लाह के नबी की जवानी को देखिए, आ रही को मख्तूम में पढ़िए टॉपिक। कहते हैं कि अल्लाह के नबी के दौर में भी राग रंग और बेकार मशगले थे। अल्लाह के नबी ने कभी ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं की। एक दफा शादी थी अरब में, मक्का में किसी की, तो आपने कहा मैं भी जाकर देखूंगा वहां क्या होता है। और मत सोचिए कि हम करते हैं ऐसी शादियां, वो भी करते थे। इंतजार करते रहे कि अच्छा रात होगी तो मैं भी जाऊंगा। अल्लाह ने ऐसी ऊंग दी कि सो गए, जब उठे तो सूरज निकल रहा था। एक से जायद बार के वाकयात हैं, इसको असमत अंबिया कहते हैं। अल्लाह बचा लेता है। दुआ करें अल्लाह हमारी नस्लों को बचा ले। और वो कब बचेंगे? जब आप और मैं बचेंगे। अपने बच्चों की खुशियों में तो आप कम से कम नहीं कर सकते, आप तो नहीं कहीं जा सकते, कोई करता है तो करता रहे, तो फिर देखिए आपको क्या मिलता है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को देखिए, अली को देखिए, इब्ने मसूद को देखिए, इनकी जवानियां कैसी थी। इमाम बुखारी की जवानी फिल्में देख के नहीं गुजरी, स्पिल खेल कर नहीं गुजरी, एक ऐसी जिंदगी बसर करके गए कि आज भी इनका नाम है। उमर बिन अब्दुल अजीज जो हजरत उमर कई नस्ल में से थे, आप उनकी जवानियां पढ़ें। और इंशाल्लाह हम आगे और भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आफियत में रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।